हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय दामोदर देश भक्त वृंदा, नित्य भागवत सेविया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के 37वें अध्याय में केशी राक्षस के उद्धार के अंतर्गत आज 25वें श्लोक से शुभारंभ करेंगे। इस अध्याय में देवऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण से ब्रज में मिलने को आते हैं और 11 श्लोकों में भविष्य में मथुरा में जाकर भगवान को क्या लीलाएं करनी है उसका वर्णन करते हैं। भगवान की अद्भुत प्रार्थना करते हैं और दो असुरों का संहार इस अध्याय में है, केशी और वैमासुर का। तो आज जो हम 25वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, नारद जी भगवान को प्रार्थना करके और विदा हो गए हैं। अब भगवान पुनः गैया चराने गए। इसका अर्थ है कि नारद जी आए थे सुबह के समय और केशी का उद्धार सुबह के समय हुआ है, और नारद जब आए थे तब कोई ग्वाल बाल भगवान के संग नहीं थे, क्योंकि ग्वाल बाल उस समय भगवान ने इधर उधर गायों को देखने के लिए भेज दिया था। और नारद के जाने के बाद पुनः भगवान गैया चराने गए, और ये लीला काम्यवन की है। और काम्यवन में वैसे भगवान का ननिहाल भी, यशोदा मैया की माता का घर, माता पिता का घर काम्यवन के पास ही है, और वहाँ आज भी जब हम काम्यवन के दर्शन में जाते हैं तो वैमासुर की गुफा को देखने जाते हैं। तो ये वैमासुर के उद्धार का अब प्रसंग चल रहा है। तो आइए 25वां श्लोक पढ़ते हैं। भगवान अपि गोविंदो हत्वा केशिनम आवे पशुन्नपालायतः पालयि प्रीतहि व्रजः सुखावः। भगवान अपि गोविंदा, भगवान होते हुए भी हैं तो साक्षात परम पुरुष भगवान, गोविंदम आदि पुरुषम कहें या कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहें, फिर भी क्योंकि उनका नाम गोविंद है इसलिए गैया चरा रहे हैं। वो अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं। गोविंद के बहुत से अर्थ हैं, और गोविंद देव के प्रकट्य के समय श्री रूप गोस्वामी को गोविंद देव के और अन्य अर्थ भी अनुभूति हुए थे, परंतु यहां गोविंद का अर्थ है गायों को आनंद देने वाले। भगवान होते भी गो ब्राह्मण हिताय है, वो ब्राह्मण से पहले गो लिखा हुआ है, तो गायों से भगवान को अति प्रेम है। तो गोविंद फिर क्या करने गए? हरे कृष्ण, गोविंद फिर क्या करने गए? फैन ऑफ करने, ऊपर वाला, हत्वा केशी नाम, केशी का उद्धार करने के बाद, केशी राक्षस का भगवान ने उद्धार किया। ये केशी घाट एक ही जगह है जहां जमुना आज भी घाट के ऊपर चल रही है, और यह भगवान ने केशी राक्षस का उसके मुंह में पूरा हाथ घुसा के उसका सांस बंद कर दिया और उसके प्राण निकल गए। अहावे का मतलब युद्ध में, केशी के साथ जो भगवान का युद्ध हुआ परस्पर, उसमें भगवान ने केसी को ऐसा पछाड़ा कि भगवान को कोई खराश भी नहीं आई। पशुन पाल यत पाल ही ग्वाल बालों के संग पाल ही ग्वाल बालों के संग फिर अपने गायों को चराने के लिए वन में ले गए। उसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों गैया चरा रहे? ओ, 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 ग्वाल बाल को आनंद देने के, सारे ही ग्वाल बाल प्रीत ही बड़े प्रसन्न हो गए, केशी का उद्धार हुआ, आज तक कई राक्षस मारे इसलिए उनको कोई भय नहीं है। व्रज सुख आवह, श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य है अपने ब्रज वासियों को सुख देना। तो केसी राक्षस का युद्ध में उद्धार करने के उपरांत भगवान परम पुरुष श्री कृष्ण गायों को चराते हुए अपने ग्वाल बालों के संग में आगे दिनचर्या कर रहे हैं, और दोनों कामों से, केशी के उद्धार से और ब्रजवासियों को सुख देना, ये दो कार्य जो है ये दोनों कार्य भगवान ने किए, ब्रजवासियों को सुख दिया और केशी का उद्धार किया। श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, नारद विदा हो गए, भगवान होते हुए भी कृष्ण गोविंद के नाम को सार्थक करने के लिए गैया चरा रहे थे। गोकुल का राजा है, जो गोकुल का मतलब जहां गाय है, गोप है, गोपियां हैं, तो उसके अनुरूप ही अपना कार्य कर रहे थे। और ये नारद के आने से लेकर अभी तक, बात बीच में नारद आ गए, लेकिन ये लीला तो केशी की पहले से ही चल रही थी। तो केशी को मारने के उपरांत युद्ध में ऐसा आहावे लिखने का अर्थ है कृष्ण को कोई चोट नहीं लगी, क्योंकि वो बलवान है, वो गैया ग्वाल वालों के साथ गैया चरा रहे थे, अब उनको कोई भय नहीं था, इसलिए वो आनंदित थे। ये प्रीति शब्द है, ये ग्वाल वालों के लिए है जो बड़े आनंदित थे। क्यों आनंदित थे? क्योंकि उनको कोई भय नहीं था। तो भय जब भय होता है तो आनंद नहीं होता है, तो भय नहीं था इसलिए आनंद थे। श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं, भगवान गैया चरा रहे थे, भक्तों से अति स्नेह करते हैं, इसलिए नारद को ज्यादा देर अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि नारद रहेगा तो ग्वाल बालों के संग लीला नहीं हो पाएगी, इसलिए नारद जी को विदा कर दिया। और नारद जी क्यों आए थे? सनातन गोस्वामी कहते हैं, आप सुन के आए हैं कि वो भगवान की मथुरा लीला की भूमिका बनाने के लिए आए थे। भगवान होते हुए भी गैया चरा रहे थे, क्योंकि वो गोकुलनाथ थे, वो गोविंद थे, और ब्रज को आनंद दे रहे थे निरंतर। और ग्वाल बालों के संग आनंद पूर्वक लीला करने के लिए नारद को विदा कर दिया, ज्यादा देर वहां रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए उसको भगवान और गोविंदा भी कहा गया है। गोविंद का और केशी का जो युद्ध था उसमें भगवान के बहुत बड़े बल वीर्य का वर्णन है, भगवान का वीर्य रस है, गाय चरा रहे थे और ततो गोप्यश्च गोपाश्च हते केशिनी विस्मिताः तुष्टवोः पुंडरीकाक्षम अनुराग मनोरमम्। केशी के मारने से, उधार करने से सारे ग्वाल बाल और गोपियां बड़े आश्चर्यचकित हुए, और उन्होंने पुंडरीकाक्ष भगवान श्री कृष्ण में उनका अनुराग प्रीति बढ़ गई, विष्णु पुराण ने लिखा है। तम हतम केशीनाम दृष्ट्वा गोपा गोप स्त्रियश्च तहा बभोवो मुदिताः सर्वे हतविघ्नाः हतकलमाः दामोदरं च श्रीमन्तं यथास्थानं यथा वयः अभयन्दन् प्रियैरवाक्यैः पूज्यन्त पुनः पुनः। केशी को मरा हुआ देखकर सारे ग्वाल बाल और गोप और गोपियां उनकी पत्नियां बड़ी आनंदित हुई और अब उनको कोई भी रुकावट नहीं थी, कोई थकावट नहीं थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वेलकम किया, स्वागत किया उनके आयु के अनुसार बड़े मधुर वचनों के द्वारा और बार बार उनका पूजन किया। हरिवंश प्राण भी इस लीला का वर्णन करते हैं। कुछ आचार्यों का कहना है केशी का जो वध है वो ब्रज में जैसे हुआ वो नारद के आने से पहले उनकी महिमा गाई इन सारे ब्रजवासियों ने और नारद के जाने के बाद भी महिमा गाई। वो क्यों महिमा नहीं बीच में गा रहे हैं, क्योंकि बड़ा सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे क्यों लिखा है? बोला महान गुरु नारद पधारे थे तो सुखदेव गोस्वामी ने तो गोपों के द्वारा भगवान की केशी वध की लीला की महिमा बाद में गाई। अथवा जैसे नारद के आने का संकेत भगवान को तो पता ही था तो भगवान ने ग्वाल बालों को इधर उधर भेज दिया, इसलिए वो उस समय प्रार्थना नहीं कर पाए। प्रार्थना नारद के जाने के बाद कर रहे हैं। कृष्ण ग्वाल बालों को आनंद दे रहे थे, अभी तक उनको मथुरा जाने की हृदय में इच्छा नहीं हुई थी, भले नारद ने यह समाचार दिया था। अब ये लीला केशी की पूरी हुई। अब आ रहा है एकदा ते पशुन पालाश्चारयन्तो अदरीशानुषो चक्रोरः नीलायनः कीरडाश्चोरः पाल्या पदेशतः। एकदा शब्द आने के से लगता है कि ये दूसरा विषय एक समय की बात है, तो ये समय केशी से आगे का है कि पीछे का है, इसके ऊपर दो मत हैं आचार्यों के। ते पशु पालाह, वो जो ग्वाल बाल थे जो गैया चरा रहे थे, पशु गैया है और पाला ग्वाल गोप है। चार यंतो चारते हुए अदरी सानेशु पर्वत के साइड से जा रहे थे, पर्वत के पास से जा रहे थे। चक्रोर नीलियां तकरड़ियाह, और क्या कर रहे थे? वो एक लीला कर रहे थे। कौन सी? नीलियान, नीलियान का मतलब छुपना और दूसरे को पकड़ना है। छुपो, एक छुप जाए दूसरा उसको पकड़े। चोर पाल्या पदे शतः, और फिर उन्होंने एक गेम एक और लीला शुरू की कि कुछ चोर बनेंगे और कुछ मालिक बनेंगे, और इस प्रकार से कुछ चोर और कुछ मालिक ये लीला करने लगे। बीच में एक शब्द और है वो अगले श्लोक में आएगा, और कुछ जो है वो जैसे भेड़ हैं बने हैं ऐसे पशु बने हैं। तो ये एक दिन की बात है जब वो गैया चराते हुए समुद्र पर्वत के तलहटी में जा रहे थे तो उन्होंने छुपा छुपी का खेल खेलना शुरू किया। तो कुछ उनमें से भेड़ों को चलाने वाले बन गए, कुछ भेड़ बन गए और कुछ चोर बन गए। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं अब वो छुपना, चोरी करना और कुछ रक्षा करना और भेड़ों का ये कीड़ा करने लगे। अब जीवक गोस्वामी लिखते हैं श्रीधर स्वामी कहते हैं कि नारद ने वयमासुर का वध नहीं देखा, क्योंकि केशी का तो भगवान ने सुबह के समय ही उधार कर दिया था, मतलब अर्ली मॉर्निंग की लीला है, सुबह ही। और फिर नारद आए, उनसे बातचीत हुई, फिर कृष्ण आगे गैया चराने के लिए चले गए, तब उन्होंने व्यमासुर को मारा, तो नारद ने व्यमासुर को नहीं देखा। अथवा जीव गोस्वामी लिखते हैं, ऐसे लगता है कि व्यमासुर की लीला पहले भी हुई हो, क्योंकि बहुत से असुरों का भगवान ने उद्धार किया है, और कुछ कहते हैं कि शंखचूड़ से पहले की यह लीला है। उसके लिए गोपी गीत का एक श्लोक उद्धृत करते हैं, केशी और विमासुर एक समय नहीं हुआ, ऐसे बात कहते, इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है, भगवान ने सबका उद्धार किया है, सब लीला धारावाहिक नहीं है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। और एकदा शब्द कहता है कि अन्य समय की लीला है ये, तो कौमार अवस्था पूरी होते समय ये लीला हुई है। एक ऐसा भी वर्णन है जहां गोपियां ये गीत गाती हैं, विष जला पयाद व्याल राक्षसा वर्ष मारुताद वैद्यवनलता वृष मयात्मजाद विश्वतो भयात ऋषभ ते वयम रक्षितामो। इस श्लोक में मया आत्मजात जो शब्द है ये व्यमासुर का नाम है, क्योंकि वो मया राक्षस का पुत्र था। तो गोपियां गोपी गीत में अगर मया आत्मजात कहती हैं, इसका मतलब व्यमासुर का वध संभवतः पहले हुआ है, ऐसा जो है ये 31वें अध्याय के गोपी गीत के श्लोक से जीव गोस्वामी इसका कुछ आचार्यों का मत कह रहे हैं। तो वृष आत्मजा का मत तो वत्सासुर है, मय आत्मजा का अर्थ है व्यमासुर। तो अब ये चोर और चौकीदार का खेल खेल रहे थे, ऐसे एक भेड़ चराने वाले एक भेड़ों के मालिक थे और कुछ चोर थे जो भेड़े जो कुछ ग्वाल वाल भेड़े बन रहे थे उनको चुरा रहे थे। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, श्री श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि नारद ने दहीन देखा व्यमासुर का, वही बात लिखते हैं, केशी को सुबह में मारा और फिर भगवान गैया चराते हुए व्यमासुर का वध किया, ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान ने केशी का वध किया, और उसके बाद ग्वाल बालों के संग भगवान कुछ और क्रीड़ा करने लगे, कुछ और लीला करने लगे, खेल खेलने लगे। और वो खेल क्या है कि चुराना, भेड़ों को चुराना, चोर बनना, और ये खेल है। दो दो पक्ष हो गए, कुछ भेड़ बन गए, कुछ उसके मालिक बन गए, कुछ चोर बन गए। और श्लोक में यहां भेड़ का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि उनका कोई महत्व ज्यादा नहीं था गेम में। भेड़ तो न चिल्लाती थी न कुछ बोलती थी, इसलिए उनका नाम नहीं लिखा है, लेकिन खेल ये खेल रहे थे। तत्रासं कतिचित् चोराः पालाश्च कतिचिन् नृपः मेषायिताश्च तत्रैकः विजहारो अकुतो भयाः। तत्रासम केतिचित कौचोरा, उनमें से कुछ चोर बन गए ग्वाल बाल। पालाश्च कतिचित निरप, महाराज परीक्षित, कुछ उसमें से पालक बन गए, मालिक बन गए। मैश्यास्त का मतलब कुछ भेड़ बन गए। तत्र वहां एक के उनमें से कुछ भेड़ बन गए। विजरहो अकुतो भयम, और वो विचरहु का मतलब खेलने लगे, अकुत भय का मतलब निर्भय होके खेलने लगे। निर्भय क्यों होके खेलने लगे? इस प्रभुपाद जी के शिष्य इसका अनुवाद लिखते हैं, इस खेल में हे राजन कुछ चोर बने, कुछ भेड़ों को चराने वाले बने और कुछ भेड़ बने। बड़े आनंद पूर्वक निर्भय होके इस खेल को खेलने लगे। बिना भय के क्यों खेल रहे थे चक्रवर्ती पाद लिखते हैं? क्योंकि इसमें कोई चोर तो असली चोर तो था नहीं, और भेड़ें कोई असली भेड़ें तो थी नहीं, और जो ले जाएगा वो वापस देगा, क्योंकि सारे मित्र ही खेल रहे थे। तो भय तब हो जब कोई वास्तविक चोर हो, तो इसलिए निर्भय थे क्योंकि ये खेल था। तो इसमें चोर भी वही ग्वाल बाल थे, भेड़ भी वही ग्वाल बाल थे, और रक्षक भी वही थे, तो ये लीला हो रही थी। और इस चोरी में कोई हल्ला गुला नहीं था, चिल्लाना नहीं था, वो ले जाते थे भेड़ को, किसी ने उनको पकड़ के ले जाते थे बस। और ये पर्वत के शिखर पे हो रहा था, दे डिड दिस ऑन द माउंटेन प्लेट्यू, ऊपर पर्वत के ऊपर सीधी जगह है, वहां कहीं हो रहा था। कौन सा गेम खेल रहे थे, कैसा लीला कर रहे थे, कौन सा खेल था? सनातन गोस्वामी कहते हैं वो उनमें से दो पक्ष बन गए, कुछ चोर बन गए, कुछ मालिक बन गए, कुछ भेड़ बन गए, और पर्वत के ऊपर जो समतल जगह है वहां ये खेल कर रहे थे। उनको भय नहीं था क्योंकि भगवान साथ थे। जहां भगवान है वहां भय क्यों होगा? वहां भय होने की कोई संभावना नहीं है, भगवान साथ में थे। केशी को मारने के बाद तो उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, अब क्या हुआ, एक कई राक्षस मारे, आज भी सुबह केशी मरा है, तो अब हमें कोई भय नहीं है। और सारे भगवान ने, तो इसलिए ग्वाल बाल निर्भय थे। और इससे हमें यह समझना चाहिए, हम भी जब प्रचार करते हैं तो हमको निर्भय होना चाहिए, क्योंकि प्रचार कृष्ण का करते हैं, कृष्ण हमारे साथ है, और अपने नाम के रूप में हमारे साथ है, कीर्तन के रूप में हमारे साथ है, गीता के रूप में हमारे साथ है, भागवत के रूप में हमारे साथ है। तो हमारे को निर्भय होकर प्रचार का कार्य करना चाहिए। और ये जो एक लाइन है ये बड़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए व्यक्तिगत जो है अनुभव की लाइन है, और प्रैक्टिकली हमको ये समझना चाहिए। और ऐसी परिस्थितियों में जब प्रचार करते हैं, जैसे हम कभी ऐसे देशों में जाके प्रचार करते हैं जहाँ भय का वातावरण है, वहाँ कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति बहुत अधिक होती है, और ये यहाँ बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है कि जब भगवान आपके साथ है, माला आपके गले में है, उसके अंदर हरे कृष्ण महामंत्र रोज जपते हो, तो कृष्ण आपके संग है, और जब कृष्ण आपके संग है तो फिर आप कोई चोर हो, कोई लुटेरा हो, या कोई बदमाश हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उस समय वैमासुर वहां आया, ग्वाल बाल के रूप में आया, इसलिए किसी ने पहचाना नहीं, वो सब अभी भी खुशी खुशी खेल रहे थे। और एक कारण है, उनको एक भय क्यों नहीं था, समय का भी भय नहीं था, पता नहीं कितना समय लगेगा, गैया कब ले जाएंगे, वो भी परवाह नहीं थी। क्यों? वो भगवान से अलग नहीं होना चाहते, जब तक खेलेंगे तब भगवान से साथ हैं, और घर गए तो फिर भगवान से थोड़ी दूरी हो जाएगी। तो उनको खुशी इतनी थी और निर्भय थे कि भगवान के संग है। इसलिए प्रभुपाद जी कभी 24 घंटे भक्त भगवान के ही सुमरण में होते हैं। तो भगवान का संग साक्षात हो या सुमरण में हो, भगवान का संग वही है, और निरंतर जो भगवान के सुमरण में होता है वो निर्भय रहता है। और नृप का यहां संबोधन क्यों किया? बोला महाराज आप राजा हो तो प्रजा निर्भय है, राजा के होते हुए प्रजा निर्भय होती है, और यहां कृष्ण के होते हुए भक्त निर्भय होते हैं, उनको कोई भय नहीं है। अब मय पुत्रो महामायो वयोम गोपाल वेश दृक महेशाइताम अपोवाह प्रायश्चोरायितो बहुन। माया पुत्रो, माया दानव का पुत्रो, महामाया, बड़ा मायावी था। वयोम उसका नाम था वयामासुर। गोपाल वेश दृक उसने अपनी माया से अपने आप को गाय चराने वाला गोप बना, वेश का धारण कर लिया, पगड़ी पहन ली और सब लाकूटी ले ली, वैसे ही लगने लगा। मैश्याताम जो भेड़े थी वो अपने आप को ग्वाल बाल के रूप में आया, और जो जो भेड़ जो जो बच्चे भेड़ बने हुए थे अपोवाह उनको उठा के ले जा रहा है, चोरी कर रहा, क्योंकि ये तो उनका खेल ही ऐसा था कि कुछ बच्चों को उठा के ले जाना और फिर एक खेल खत्म हुआ उनको वापस ला के दे देते थे। लेकिन ये क्या करता था, उन सबको उठा के जाता और प्राय का मतलब एक एक करके बहुत से उठा के चला गया, और उठा के कैसे गया, बोला मैं तो चोरों के, मैं तो चोरों वाले ग्रुप में हूं जो चोरी करते हैं, आता था उठा के जाता था और बहुत को ऐसे ले गया। तो पहले जब ग्वाल बाल खेल रहे थे तो भाई मानो के ऐसे बहुत थे ग्वाल बाल, कोई उनकी गिनती नहीं की जाती। केवल हम समझने के लिए कहें कि 20 ग्वाल बाल जो है भेड़ पालने वाले थे और उनकी 20 भेड़े थी और 5-6 चोर थे, ऐसे मान लो। तो 5-6 चोर 5-7 भेड़ ले जाते थे और जब जो 4-5 भेड़ बचती थी तब जाके उनको पकड़ के लाते थे, भेड़े वापस आ गई, फिर दोबारा खेल शुरू करें। परंतु अब ये आस्ते आस्ते ले जाने लगा, प्राय का मतलब बहुत से भेड़ बने हुए बच्चों को उठा के ले गया, 4-5 ही केवल बचे। जीव गोस्वामी लिखते हैं मैं महामायावी था, मैं दानव जो है वो बड़ा महामायावी था, और इसलिए वयमासुर को महामाया कहा है। उसके पास बहुत बड़ा योग की शक्ति थी, अपने आप को नकली वेश में ग्वाल बाल बना के आया है और उस असुर को ग्वाल बालों ने पहचाना नहीं। भगवान ने उसको खेलने क्यों दिया, भगवान ने गोप वेश का आदर किया कि मेरे मित्र के वेश में आया है, भगवान पहचान गए, बोला मित्र के वेश में आया है तो मैं सबके सामने अपने मित्रों के वेश का अपमान नहीं करूंगा, इसलिए भगवान के हृदय में दया आई कि कम से कम वेश तो गोप का धारण किया है, यह भी बहुत बड़ी बात है और यही उसके उद्धार के लिए अच्छा एक कारण बन जाएगा। अनेक भक्तों को ले गए भेड़ बने हुए गोपों को, केवल 4-5 ही बचे गए। पर आयह का अर्थ है कि असुर ने अपने आप को ऐसे दिखाया है जैसे उसका लक्ष्य भक्ति करना है अथवा भगवान की सेवा करने आया है, इसलिए थोड़ा सा उसको रियायत दी गई, उसको थोड़ी छूट दी गई कि खेल लो। अथवा अथवा अन्य गोपों ने, सनातन गोस्वामी एक बात कहते हैं, उस वयमासुर के लिए कुछ ज्यादा उठा के जे रहा है चोरी, इसलिए कुछ ज्यादा नहीं किया जो है शोर नहीं किया। तो कहाँ छुपा रहा था, सब उठा के जा रहा था, जो भेड़ बने हुए ग्वालों को कहाँ छुपा रहा था। गिरीदरयाम विनिक्षिप्त क्षिप्या नीतम नीतम महासुर शीलया पिदधे द्वारम चतुः पंचावशेषिता। गिरीदरयाम जो एक गुफा थी, केव थी, पर्वत के ऊपर विनिक्षप्या, उसके अंदर फेंकता था उठा के जाके। वो तो भेड़ बनी हुई है, वो तो उसको तो पांव से नीचे चल रहा था, हाथ पांव से चल रहा था, चार पांव बना हुआ था, उसको उठा के। अभी तो राक्षस तो था बड़ा, इसमें जोर था, वो तो ग्वाल बाल छोटे थे। ये क्या उम्र होगी इनकी, सब 11 साल, अभी 10 और 11 साल की उम्र के होंगे, कुछ 9-10 के होंगे, कुछ 11-12 के होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 11 साल तक तो रहे ही मुश्किल है वृंदावन में। अभी तो अक्रूर आएगा और अब जाने का समय हो गया, मथुरा लीला शुरू होने वाली है। और भगवान के मित्रों के 3 वर्ग बताए गए हैं, कुछ भगवान से छोटे, कुछ भगवान के समान आयु के, कुछ भगवान से बड़े। तो इनको उठा के मैं ने उस गुफा में फेंका है। ये जो क्षिपी पौ का मतलब है, जैसे गेम में भी एक दूसरे को बाल नहीं फेंकते हैं, उसको भी क्षिपी तो कहते हैं। तो उठाता गया और गुफा में फेंकता गया। नीतम नीतम, नीतम नीतम का मतलब एक एक करके उनको घसीट के लाया और गुफा में फेंका। महाअसुरा, वो बड़ा भयानक असुर था, उसके लिए ग्वाल बाल को उठा के फेंकना ऐसे था जैसे मूंगफली को उठाया, मुट्ठी में मूंगफली उठाया और फेंका। शीलया पिद धदे, और ऐसा नहीं है कि वो वापस निकल के आना है, आ न जाए इसलिए एक बड़ा पत्थर उस गुफा के दरवाजे के ऊपर दे देता था कि इसमें डाल दिया है, अब बाहर नहीं निकल पाए। अब फिर जाता था, फिर पत्थर को हटाता था, दोबारा लाता था, फिर अंदर डालता था, फिर पत्थर देता था। शील या पिदधदे द्वारम चतुपंच, बस 4-5 अवशिष्ट बाकी बचे थे। अवशिष्ट का मतलब शेष बचे थे, 4-5 भेड़ बने हुए, जो भेड़ बने थे वो इतने ही बचे थे, बाकी सब लेके चला गया था चक्रवर्ती पादर। बस 4-5 बचे थे वो ग्वाल बाल जो भेड़ बने थे, उनको गुफा में डाल रहा था जीव गोस्वामी लिखते हैं। जब तक 4-5 इसके 2 अर्थ जीवा गोस्वामी लिखते हैं कि 4-5 के ऐसे लगता है या तो 45 भेड़ बने हुए बचे थे और या तो 4-5 शेष बचे थे। पत्थर से गुफा में सबको बंद कर दिए, भगवान श्री कृष्ण अभी तक व्यामासुर का को सबके सामने जो है उसकी असुरता को प्रकट नहीं कर रहे थे। क्यों? बोला कृष्ण तो चोराए हुए जो भेड़े हैं उनको ढूंढ रहा था। इसका मतलब गेम ऐसा है, ये खेल ऐसा है, इसका अर्थ है कि मैं मेरी भेड़ है, कोई चोर ले गया तो मैं जाके अलग जगहों में ढूंढता फिरूंगा, तो अब कितनी बाकी है पता नहीं है। वो दो दो जगह जगह पे कृष्ण ढूंढ रहा था भेड़ों को, जो भेड़ बने हुए ग्वाल बालों को, कहाँ चली गई, वो कहीं छुपा के रख देते थे वो, और दूसरों को जाके उनको ढूंढ के निकालना था। ये छुपा छुपी का खेल जिसको हम कहते हैं, एक छुप जाए दूसरा उसको ढूंढ के निकाले, ऐसा खेल था। तो कृष्ण अभी तक गुम हुए चुराए हुए भेड़ों को ढूंढ रहे थे, इसलिए व्यमासुर को अभी तक क्या शब्द लिखा है, कृष्ण वॉज अनअवेयर टिल दैट टाइम ऑफ व्यमासुर। अनअवेयर का मतलब अभी उसको नोट नहीं किया था कि ये ऐसा कोई कार्य कर रहा है। सनातन गोस्वामी कहते हैं उनको उठा के फेंक रहा, क्षिप्तों का मतलब फेंक रहा था, अथवा गुफा के अंदर आराम से बिठा रखा, दोनों का अर्थ हो सकता है, परंतु वो असुर था। ये बड़ा भारी असुर था, वो 4-5 नहीं बहुत सारे इकट्ठे करके लाया और धक्का देके सबको गुफा में डाल दिया। महाअसुर है, इसलिए माया का बड़ा, इसमें माया का है। और गुफा का दरवाजा पत्थर से बंद किया। नहीं तो इतना संभव नहीं था कि इतने सारे ग्वाल बालों को एक गुफा में, कुछ अंदर डालेगा कुछ बाहर निकल के आ जाएंगे। भेड़ तो भेड़ बैठ तो नहीं जाएगी, चल सकता है, वो तो खुला होगा तो निकल आएंगे, इसलिए मुंह बंद कर दिया। तस्या तत्कर्म विज्ञाय कृष्णः शरणदः सताम् गोपान्यतम् जग्राह विक्रम हरि इवाओ जसा। तस्य कर्म विजाना, भगवान अब इस नए ग्वाल बाल के रूप में आए हुए बदमाश वयमासुर के काम को जान गए, अच्छी तरह से समझ गए कि ये क्या कर रहा है। कौन समझ गया? कृष्ण। कैसा है कृष्ण का गुण? शरण दह सताम, जो अपने भक्तों को शरण देने वाले हैं, वो शरणागत वत्सल है भगवान। ये शरण देना शब्द जो है, ये कृष्ण का अथवा भगवान का एक मुख्य लक्षण है। ये गीता में भी जो मुख्य श्लोक है, सर्वधर्मान् प्रमाम एकम शरणम व्रज, और राम जी भी विभीषण के आने के ऊपर कहते हैं, एक बात जो कह दे कि मैं भाप का हूं, शकरदेव परपना, परपना शरण का अर्थ है। तो और ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो ये शरण लेना भगवान को सबसे अच्छा लगता है, शरणागत वत्सल है भगवान। और शरण कौन लेते हैं? और माया से जिसको मुक्त होना है उसको तो शरण लेना ही चाहिए। देवी एष गुणमयी मम माया दुर्दया, ये माम प्रपद्यन्ते मायामेतान तरन्ति ते। तो भगवान का शरण कौन लेते हैं, भगवान का आश्रय कौन लेते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं, सताम, सत भगवान को कहते हैं, और जो उसके अनुगामी बने वो सताम, जो उनके सेवक बने वो सताम, जो उनके सहायक बने वो सताम। तो भगवान भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है। तो यहां भक्त कौन थे? गोपान, जो गोप थे, नियतम जिनको, जो भेड़ बने थे, वो तो भगवान के अपने ही पार्षद थे, भगवान के सखा थे। जग्रहा का मतलब है नयंतम, जग्रहा जिनको पकड़ के ले गया था। अब भगवान ने क्या किया? विरकम हरि इव ओजसा। तो ले कौन गया था? बोला बड़े अपने आप को बहुत बड़ा बलवान मान रहा था, माया भी हूं, माया का, मैं दानव का पुत्र हूं, ग्वाल बालों को सबको बंद करके उसका मन में था तो कि कृष्ण को भी दबोच दूंगा। आया तो कंस का भेजा हुआ था ये भी, परंतु भेड़ों को चुराने वाला कौन होता है? गडेरिया, जो भेड़ चराने वाला है, वो होता है यहां जिसको कहा जाए, वो कौन सी एक अंग्रेजी में लिखा है, वुल्फ। वुल्फ का मतलब है, क्या कहते हैं वुल्फ को हिंदी में?
सांड बोलते हैं, सांड।
वुल्फ को सांड तो नहीं कहते हैं,
नहीं, भेड़िया।
भेड़िया जो भेड़ों को ले जाए वो भेड़िया। अपने आप को बड़ा वीर कह रहा था भेड़िया। और यहाँ जो उनके रक्षकों का स्वामी था कृष्ण, वो क्या था? हरि ही। वो यहाँ हरि का अर्थ है शेर, भगवान को हरि कहते हैं, तो उसका एक हरि का अर्थ संस्कृत में शेर। कहाँ शेर? जिसका ओजसा, जो बड़ा शक्तिशाली था, कहां ये वयमासुर भेड़िया। तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जो शरणागत वत्सल है अपने भक्तों का, वो अच्छी तरह से जान गए कि वयमासुर क्या कर रहा है, मेरे प्रिय भक्तों को गुफा में जाके बंद किया है। जैसे शेर किसी भेड़िए को दबोच दे, ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने बलात् उस वैमासुर को दबोच दिया, जो भेड़ बने हुए ग्वाल बालों को चुरा कर ले गया था। कृष्ण ने वैमासुर को पकड़ लिया जैसे शेर भेड़िये को पकड़ता है। वैमासुर के बहुत क्रूर और दुष्ट कार्य को देखा, तस्य तत्कर्म, जो उसका कार्य था वो बहुत क्रूर था। क्रूर क्या था? चुराने वाले भेड़ों को एक गुफा में बंद करके और मुंह के ऊपर पत्थर दे रहा था। कितना बड़ा अंदर भगवान के भक्तों को पीड़ा हुई होगी अंधेरे में। ये तो खेल का उद्देश्य नहीं था, वो तो खेल तो आनंद के लिए कर रहा था, ये दुख दे रहा था। और वो तो कृष्ण के शरणागत थे और सारे ही भक्त थे, वो तो सब भक्तों को देते हैं। उनको इसने पकड़ लिया था। सामान्य भक्तों, शरणगत भक्तों को भगवान रक्षा करते हैं, ये तो सामान्य नहीं थे, ये तो पुंज, कितना उनको, कितना पुंज किया है कि आज कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, ऐसे लिखा है सुखदेव गोस्वामी ने। ये तो विशेष थे। सनातन गोस्वामी कहते हैं भगवान उसके क्रूर कर्म को जान गए, वो भक्तों शरणागत के रक्षक हैं, और उसने गोप वेश धारण किया था, यही कारण है कि अभी तक भगवान उसको भक्त समझ के रक्षा कर रहे थे। पर भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे? बलात् उसको पकड़ लिया, जो देखने में भी भेड़िये जैसा था, इसलिए यहां भेड़िये का उदाहरण दिया गया है। आज हमारे श्लोक तो यहां पूरे होते हैं। अब कैसे मारा उसको? जैसे बलि के पशु को गला दबा के मारते हैं, ऐसे मारा। अरे कृष्णा, तो यहां कथा को विराम दें। अब है इसके बाद कुछ विशेष नहीं, तीन श्लोक हैं, क्या करेंगे परमानंद जी? सनिजम रूपमास्थाय गिरेन्द्रः सदर्शं बलि इच्छं विमोक्तुम् आत्मानं नास्क्नोदा ग्रहणातुरः। आगे इसको पढ़ें कि यहां विराम दें, प्रश्न उत्तर करें। हरे कृष्णा, प्रभु जी कहिए। हरे कृष्णा, हमने पहले एक बार पहले आपको बताया था।
प्लीज कंटिन्यू प्रभु, जहां तक आप कर सके।
वो तो पूरा हो जाएगा, ये मेरे जाने का 10-15 मिनट है अभी तक।
हाँ, फिर क्वेश्चन आंसर कम हो जाएगा, कोई बात नहीं।
सनिज रूपम आस्थाय, जैसे भगवान ने उसको दबोचा, वो अपने वास्तविक रूप में आ गया। वो जो ग्वाल बाल का दिखावे का एक नकली वेश पहन के आया था, वो उसका जैसे पूतना सुंदर बन के आई थी, और कृष्ण ने जैसे उसका प्राण खींचा तो वो असली राक्षसी हो गई, तो ये भी अपने रूप में आ गया। गिरीन्द्र दृशम बलि, गिरीन्द्र जैसे गिरीन्द्र, गिरी इंदर कहते हैं पर्वतों का राजा, उसके समान सदृशम बलि, बड़ा शक्तिशाली, इच्छन विमोक्तुम, अपने आप को छुड़ाना चाहा, आत्मानम अपने आप को, न श्नोक्त नहीं छुड़ा सका, ग्रहण आतुराह, क्योंकि भगवान ने बहुत बल से उसको पकड़ के रखा था। तो जो असुर था वैमासुर, वो अपने वास्तविक असुरी शरीर में आ गया। वो कितना बड़ा था? एक पर्वत के समान हो गया। गिरेंद्र अपने आप को छुड़ाना चाहा और ऐसे नहीं कर पाया। क्यों नहीं पार किया कर पाया? अपनी शक्ति सारी समाप्त हो गई, क्योंकि साक्षात भगवान ने उसको बहुत दबोच के पकड़ के रखा था, बहुत बलवान था, अपने आप को छुड़ाना चाहता था, अपने वास्तविक रूप में आ गया, गोप रूप में रह नहीं सकता था, परंतु छुड़ा नहीं सका। एक पर्वत के समान उसका शरीर काया था, बहुत कठोर था, बड़ा बलवान था, लेकिन छोटे से गोपाल 10.5 वर्ष के कृष्ण से अपने आप को छुड़ा नहीं सका। वो होंठों से पकड़ी हुई पूतना के प्राण निकाल लिए, इसको तो फिर भी हाथों से दबोचा था, तो क्या कर सकता है। तम निग्र्याच्युतो दोर्भ्याम पात्यत्वा मही तले पश्यताम द्विदेवानाम पशु मात्रम अमार्यत। तम निग्रिया अच्युतो दोरभ्यम, उस व्यामसुर नाम के असुर को बहुत निग्रह अच्छी तरह से पकड़ के रखा अच्युत ने। वो एक बार पकड़ता है तो चूकता नहीं है, उसको छोड़ता नहीं है। कैसे पकड़ गया? दोरभ्यम, दोनों हाथों से पात्यत्वा, और उसको नीचे दबोच के धरती पे गिराया। कहां गिराया? मही तले। इसका मतलब जैसे कुश्ती में जैसे उसको गिराते हैं, उसको गिराए। और पश्यताम, जब वो दूसरे ग्वाल बाल जो वहां थे वो देख रहे थे, और कौन देख रहा था? दिवी, आकाश में देवता देख रहे थे, देवानाम, आकाश में देवता देख रहे थे। पशु मारम, उसको मारा कैसे? जैसे यज्ञ के पशु को मारा जाता है, यज्ञ में जो पशु बलि देती है दी जाती है, वो गला घूंट के इसका ऐसे गला घूंटा गया। अमार्यत मारा। अच्युत ने वैमासुर को अपने दोनों भुजाओं में पकड़ पे धरती के ऊपर पछाड़ा, और जब आकाश से देवता ये दृश्य देख रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने उस वैमासुर का वध ऐसे किया जैसे यज्ञ के पशु की बलि दी जाती है। आचार्य कहते हैं, प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, यज्ञ के पशु के समान भगवान ने उसका गला घोंट के मार दिया। चक्रवर्ती पाद लिखने लिखा है स्ट्रेंगुलेटेड वैमासुर। स्ट्रेंगुलेटेड का मतलब गला दबाना, जैसे पशु का दबाते हैं जब उसकी जब उसका यज्ञ में बलिदान करते हैं। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं ऐसे भगवान ने क्यों इसको मारा, और कोई तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल किया, और कोई जो है साधन क्यों नहीं किया? बोला ये ग्वाल बालों को दबोच रहा था, उनको सफोकेट कर रहा था, तो भगवान ने इसको ये यथामाम प्रबंधन थे, उसने भगवान के भक्तों को दबाना चाहा तो भगवान ने उसको दबा दिया, क्योंकि वो गुफा का दरवाजा बंद कर रहा था, वो उसके अंदर बिचारे वो उनका दम घूट रहा था, तो भगवान ने इसका दम घूट दिया। देवता बड़े आनंद से आकाश में देख रहे थे, वो आकाश से देख रहे थे, पहले बड़े भयभीत थे कि इतना बड़ा असुर आया है, मय का पुत्र है, क्या होगा, बच्चों को छुपा दिया है गुफा में। उस असुर को भगवान ने पशु मात्रम अमार्यात का मतलब उसके सांस को रोक दिया, गला दबा दिया। और उपमाने कर्मणि, इसका अर्थ है कि ऐसे ही उचित था, क्योंकि उसने ही ऐसा कार्य किया था इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। क्योंकि उस ये जो खेल था, अच्छा ये जीवा गोस्वामी बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं कि क्या क्या खेल क्या था। बोला भेड़ को उठा के जाएंगे तो क्या करेंगे, उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के दबा देंगे ताकि उसको कोई देखे ना, तो भगवान ने उसको गला दबा दिया, क्योंकि ये खेल ही ऐसा था। तो भगवान मानो कि अभी भी खेल खेल में उसको मार रहे हैं। ये उचित है, इस लीला में चोर को थोड़ी देर के लिए जब पकड़ते थे तो उसको गला दबाते थे। उन्होंने ग्वाल बालों को ऐसे मारने का प्रयास किया था गुफा में डालकर, तो भगवान श्री कृष्ण ने, वो अच्युत है, वो अपनी लीलाओं को कभी समाप्त नहीं करते हैं, वो सदा चलती रहती हैं। अच्युत का अर्थ है कृष्ण डिड नॉट स्टॉप परफॉर्मिंग सच पास्ट टाइम, अच्युत, ये भगवान की लीला है। गुहा पिधानम निर्भिद्य गोपान निहसार्य कृच्रतः स्तूयमान सूर ही गोपी प्रविश प्रवेश स्व गोकुलम। गुहा पिधानम, जो गुफा के मुंह के ऊपर पत्थर था, निर्भिद्य उसको भगवान ने हटा दिया। गोपान निहसार्य कृच्छतः, और जो बिचारे अंदर ग्वाल बाल बड़ा भयानक खर्च रहे, मतलब बहुत भय में थे, स्तूयमान वो उनको निकाल दिया। स्तूमान सूर्य, भगवान की देवताओं ने प्रार्थना की, गोप ही परवे, और गोपों को लेकर भगवान अपने गोकुल में पुनः प्रवेश किए। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ, उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने उस बड़े पत्थर को जो गुफा के मुंह को बंद करके रखा था, जिसके अंदर ग्वाल बाल उसने छुपा के रखे थे कि कहीं भाग न जाए, उसको हटा दिया, तोड़ चूर चूर कर दिया, फेंक दिया, खत्म कर दिया। उसके उपरांत देवताओं ने और ग्वाल बालों ने भगवान की महिमा गाई, और भगवान अपने ग्वालों के साथ, गायों के साथ अपने ही गोकुल में लौट आए। श्री राजीव गोस्वामी लिखते हैं, भगवान ने दुखमय स्थान से, खर्चरत का मतलब जहां बहुत बड़ी पीड़ा भोग रहे थे ग्वाल बाल, गुफा के अंदर पत्थर से बंद किए हुए मुंह में दुखी थे, भगवान ने उनको वहां से निकाला। भगवान की देवताओं ने प्रार्थना की, और उसके उपरांत गोपों ने भी भगवान की महिमा गाई और गोकुल में प्रवेश किए बड़े आनंद से। परविवेश, परविवेश का मतलब आनंद पूर्वक। यहां गोकुल का को कहा गया है स्व गोकुलम, भगवान का अपना गोकुल है। क्यों? क्योंकि भगवान चिंता कर रहे थे कि नारद जी आया था, मुझे कहा है मथुरा जाना है, मैं कैसे गोकुल को छोड़ूंगा। भगवान का हृदय गोकुल छोड़ने का नहीं था, कैसे मैं गोकुल से दूर जाऊं, ऐसे प्यारे ग्वाल बालों से दूर जाऊं, नंद गोपा नंद से दूर जाऊंगा, यशोदा से दूर जाऊं, इन गोपियों से मेरे जिन्होंने प्राण मुझे दे दिया, कैसे मैं दूर जाऊंगा। ये आगे बताया जाएगा कि भगवान इसलिए अदृश्य रूप से यही रह जाएंगे, अप्रकट रूप लीला में यही रह जाएंगे। गोप ही देव ही चाह गोप ही सुर ही सुर ही, ठीक, कहीं कहीं सुर लिखा है देव की जगह है। यहाँ हमारा ये अध्याय पूर्णावती पे पहुँचता है। कल आप अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन का, वंदना भक्ति के आचार्य अक्रूर जी का श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद।
खासकर के जो अपने शुरू में जो गोविंद के अर्थ बताए, वो काफी लोगों दिल को भाग गया, बहुत बताइए। अभी सभी भक्तों से निवेदन है, अगर उनकी कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो कृपया आपके माइक अनम्यूट करके प्लीज बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक चैट में भी प्रश्न आया है।
हाँ जी बोलिए प्रभु,
मैं पढ़ता हूँ एक बार। गीतिका माता जी कह रही है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हमने सुना है कि माया दानों का उल्लेख काफी बार आया है, रामायण में भी होता है, तो क्या यह महत्वपूर्ण है, कृपया बताइए।
ये तो उसका किसका बेटा था इसने बताया, मय दानव का पुत्र था व्यमासुर। तो मय दानव से तो भगवान ने, मैं समझता हूँ मय दानव को अर्जुन के द्वारा बचाकर भगवान ने ये हस्तिनापुर में जो जो भगवान ने इंद्रप्रस्थ उसी से बनाया था। और तो मय दानव है, दानव का मतलब है दानु का पुत्र, जो दिति के पुत्र दैत्य हैं, दानु के पुत्र दानव कहलाते हैं। तो ये असुरी श्रेणी के में आता है। और मय दानव बहुत बड़ा कलाकार है, जिसके द्वारा बहुत से कार्य कभी देवता भी करा लेते हैं, कभी भगवान भी करा लेते हैं। और मय दानव ने वो 3 पुरियां बनाई थी असुरों के लिए, जिनको भगवान शंकर ने मारा, भगवान का नाम त्रिपुरारी हुआ। तो मय का वर्णन बहुत जगहों पर आता है दानव का। एक बार हमने आपको पहले कहा था, भगवान वृंदावन छोड़ के, ब्रज छोड़ के गोकुल जाने से पहले 3 विशेष असुरों का उद्धार करते हैं, जिनका वर्णन है वैमासुर, केशी और वृषभ। वृषभ हो गया कि अभी आएगा? वृषभासुर आया कि नहीं, अभी आएगा? हाँ, तो ये तीनों हो गए। ये तीनों कोई ऐसे उपमा में कहते हैं, ये तो असुर थे ही, आए ही थे, परंतु भगवान के भक्त जो हैं, जो शुद्ध प्रेम भक्ति करते हैं, उनको धर्म के कर्म कांड, वेदों के ज्ञान और योग से प्रभावित नहीं होना चाहिए। शुद्ध भक्ति ज्ञान कर्म आदि अनावृतम होती है। तो ब्रजवासियों की अनन्य भक्ति के को कभी भी धर्म से प्रभावित हो न हो, कर्मकांड से प्रभावित न हो, ज्ञान से प्रभावित न हो वेद के, और योग से प्रभावित न हो, वो शुद्ध और पवित्र निर्मल रहे। वैमासुर जो है योग का प्रतीक है। योग में क्या है, छुपा के रखा, अपने कोई सिद्धियां दिखाते हैं, ये सब ग्वाल बालों को छुपा के गुफा में बंद कर रहा था। केशी जो है वो एक केशी घोड़े के रूप में पहले भी हाईग्रीवा ने वेदों की चोरी की थी, जिसको भगवान ने मार के वेद वापस ब्रह्मा को दिए थे। तो वेद के नाम में, योग के नाम में, और ये तो सभी जानते हैं कि धर्म का प्रतीक बेल है, बेल धर्म का प्रतीक है। धर्म के नाम में भक्तों को कोई विचलित न करे प्रेमा भक्ति से। तो इन 3 असुरों के पीछे ये एक सिंबॉलिक रहस्य है कि भगवान के भक्त इन 3 कार्यों से कभी प्रभावित नहीं होते हैं। उनकी भक्ति अनन्य होती है, उनको न योग की जरूरत है, न ज्ञान की जरूरत है, और न कर्म कांड की जरूरत है। वो केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस एक ये काम करते हैं। भक्तों के संग में रहते हैं, भागवत का नित्य सेवन करते हैं, और अर्चा विग्रह का उपासना करते हैं, बस उनका जीवन सफल है, धन्य है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और लास्ट कॉल, और किसी भक्त को कोई प्रश्न है या जिज्ञासा है?
प्रभु जी, हम वृंदावन की लीला में जैसे ज्यादातर हमेशा ये सुनते हैं कि उन लोगों को भगवान की, मतलब उनको ये नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है, बट एट द सेम टाइम उनको हमेशा फियरलेसनेस था। मतलब आपने जैसे बताया कि वो डरते नहीं थे क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे, तो दोनों को कैसे कोरिलेट करें? अगर उनको ये नहीं पता था कि वो भगवान है, तो फिर वो हमेशा इतने फियरलेस कैसे रहते थे?
क्योंकि उन्होंने आंखों से देखा था, जितनी आपदाएं आई उन सबको भगवान ने उनसे बचा दिया। और इस बात का आपने पढ़ा है पहले, गोवर्धन धारण करने के बाद सारे ही गोप आ गए थे नंद बाबा के पास के आपने हमको बताया नहीं, आपका बेटा ये इतना बड़ा पर्वत 7 दिन उठा के, ये कौन देवता है, कैसे है? नंद बाबा ने सबको बिठा के दूध पिलाया, और फिर कहा देखो मुझे कुछ पता नहीं है, गर्ग आचार्य ने नाम रखते समय कहा था ये नारायण के समान है और ये आपकी रक्षा करेगा। और वही श्लोक जो गर्ग आचार्य ने नामकरण के समय कहे वो नंद बाबा ने पुनः वहाँ उन सब गोपों को बताए। तब गोपू ने कहा अच्छा गर्ग आचार्य ने ऐसे कहा है ये हमारी रक्षा करेगा नारायण की कृपा से। वो ऐसे समझ रहे थे कि नारायण की कृपा से, और सालंगराम जो नारायण का के नारायण की शिला जो जिसकी पूजा नंद बाबा करता था, वो समझते हैं कि हमारे इस नारायण की कृपा से ये कन्हैया जो है हमारा ये सब चमत्कार दिखा रहा है, ये भगवान नहीं है, हमारे भगवान की कृपा से ऐसे कर रहा है। ये था ग्वाल बालों का और गोपों का भाव। वो जानते थे कि जन्म के समय गर्ग आचार्य ने ये पहले ही भविष्यवाणी कर दी। और एक दिन हमने आपको कथा में शायद पहले बताया था, नंद बाबा अपने नारायण की पूजा कर रहे थे सालंगराम शिला की, और ये समझते हैं कि ये सालंगराम शिला भगवान की रक्षा कर रहा है, और उसको रसगुल्लों का भोग लगा रहे थे, गुलाब जामुन लगा रहे थे, और नंद बाबा आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। कृष्ण ने रसगुल्लों को हटा के उस सालंगराम को उठा के मुंह में रख दिया। नंद बाबा वो जो अब भोग ऊपर उठाने लगे, सारण करने लगे, तो सालंगराम कहाँ चला गया? सालंगराम कहाँ गया? मुंह बंद पड़ा है। कृष्ण बोला मुझे क्या पता, बोल नहीं रहे। यशोदा कहाँ गया सालंगराम? वो तो कोई है नहीं, आप बाप बेटे बेटे हो, कहाँ जाएगा? तो थोड़ी देर के बाद देखा मुझे गले के अंदर सालंगराम पड़ा है कृष्ण के, तो उसका मुंह खुलवा के सालंगराम निकाला। भगवान ने कहा कि इतने सारे रसगुल्ले रोज खाता है तो ये खुद कितना मीठा होगा, कितना मीठा हो गया होगा सालंगराम, इसका तो रस आस्वादन करके देख लो। और फिर नंद बाबा तो उस सालंगराम को ले गए जमुना में, 108 बार स्नान किया, मेरे बच्चे को पता नहीं है, सालंगराम जी मेरे कृपा करना, बच्चे की रक्षा करना। वो सालंगराम कोई कहते हैं कि अभी भी श्री वल्लभ संप्रदाय के किसी मंदिर में कोटा में है, जो वहाँ पूजा जाता था, ऐसे हमने संतों के मुख से सुना है। सो आपके प्रश्न का उत्तर है कि भगवान श्री कृष्ण को वो अपना हितेशी मानते थे, मित्र मानते थे, परंतु उसने जितने चमत्कारी कार्य करे थे वो नारायण की कृपा से किए थे। परंतु जो वहाँ शब्द है वास्तव में संस्कृत वो ये है, नारायण असमूह, का मतलब जो नारायण में गुण नहीं है उनसे भी ये महागुण वाला है। हम भगवान मानते हैं लेकिन हमारा अपना मानने जब शुरू करेंगे तो हमारी भी ऐसे ही रक्षा करेगा। कृष्ण मेरा स्वामी है, मेरा उसमें जोड़ स्नेह जब तक नहीं, कृष्ण के प्रति मेरापन नहीं आया है जब तक, तब तक असल में दास्य भक्ति शुरू नहीं होती है। वो सब कहते हैं कृष्ण हमारा है, बस ये जो ममत्व है कृष्ण में, यही असल में भक्ति का प्राण है। हरे कृष्ण।
थैंक यू।
और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतने प्रश्न उत्तर के सेशंस के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रभु जी।
धन्यवाद।
तो हमारा जो वर्ल्ड वेजिटेरियन वीक चल रहा है एक्सपो 2023 दुबई में,